आइए सुनते हैं शमशुर रहमान फारूकी का लिखा हुआ सिपाही और बटमार। दरअसल ये इख्तिबास उनके नावल कब्ज़े ज़बान से माखूज है। हिंदुस्तान की तारीख का एक ख़ास ज़माने वाक़ियात का पस मंज़र इस इख्तिबास में मौजूद है। ये लोधी ख़ानदान का ज़माना है जिसमें सिकंदर लोधी के एक सिपाही के साथ गुजरने वाले हादसे को बयान किया गया है। नावल का ये हिस्सा वाक़िया 16वीं सदी के हिंदुस्तान के मखसूस माशरे की तस्वीर पेश करता है जिसमें बादशाह, अवाम, अमीर, सिपाही और राजन जैसे किरदार सामने आते हैं। इन तस्वीरों के इम्तिज़ाज से मालूम होता है कि समाज के मस्कुरा अफराद का आपसी रब्त ज़ब्त कैसा था। शमशुर रहमान फारूकी 1935 में प्रतापगढ़ यूपी में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए तक तालीम हासिल की और इंडियन पोस्टल सर्विसेज में पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे से वज़ीयाफ हुए। उनकी अदमी खिदमात के सिलसिले में मुल्क और गैर मुल्क की यूनिवर्सिटियों ने इन्हें अपनी एजाजी डिग्रियों से सरफराज किया। सवार इनके अफसानों का मजमुआ है। इनका नावल कई चांद थे सर आसमां जदीद अदब में क्लासिक की हैसियत रखता है। शमशुर रहमान फारूकी बुलंद पाया शायर, नक़ाद और फिक्शन निगार हैं। महानामा शबखून के मदीर की हैसियत से अदबी सहाफ़त में भी वो मुमताज़ मुकाम रखते हैं। मीर और गालिब की शहरे के अलावा उन्होंने मुतरजिम के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई है। मुल्क की आज़ादी के बाद जिन नक़ादों ने मगरबी नज़रियात को उर्दू में मुतारिफ करवाया और तनकीदी अदब को उसत अता की, इन में फारूकी का नाम अहमियत का हामिल है। उन्होंने शायरी में ज़ुबान की अहमियत और नौयत, हैयत व मौजू की वहदत और तरसील व इबलाग के मसले पर तफसील के साथ लिखा है। उन्होंने अपने मजामीन में लफ्ज़ व मायने के रिश्ते पर खुसूसी बहस की है। मीर व गालिब के अशार की तशरीह व ताबीर में उन्होंने मगरबी तनकीदी नज़रियात के पहलू ब पहलू क्लासिकी निज़ाम फ़न को खुसूसियत के साथ मद्दनज़र रखा है। उनकी पहली तसनीफ लफ्ज़ व मायने है। इसके अलावा शेर, गैर शेर और नसर, उरूज, आहंग और बयान, अफसाने की हिमायत में, शेर शोर अंगेज, ताबीर की शरह वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। तो आइए सुनते हैं सिपाही और बटमार, शमशुर रहमान फारूकी का लिखा हुआ। एक बार थानेसर के इलाके से इतला आई कि हिंदुओं ने एक तालाब कदीम को असर नौ तामीर करके वहाँ मेला एक माह बा माह मुनक़िद करना शुरू किया है और पूजा पाठ भी करते हैं और घंट नाखूज भी बजते हैं। बस इस बाब में हुक्म आली क्या सादिर होता है? सुल्तान वाला शान ने मुफ्ती आज़म से मशावरत करके फरमान लिखवाया कि वो अपने मज़हब पर हैं, बस जब तक इनके मनासिक व रसूम के पास कोई ख़तर अमन व अमान के लिए ना हो, इनसे हरगिज़ कुछ तारुज़ ना किया जाए। इंतज़ाम सल्तनत में होशियारी और ख़बरदारी की गर्ज़ से हज़रत दहली और इसके गर्द व नवा में 80,000 मुसल्लह फ़ौज हर वक्त तैयार रहती थी। कहीं से ज़रा भी बदमनी की खबर आई और जुयूश सुल्तानी हरकत में आ गए। तुगलकाबाद, गयासपुर, बेगमपुरा, सेरी और खेड़ी जो पाए तख्त के पुराने शहर थे, इन सब में मैदान वसी व मुर्तफा व मुसत्ता देखकर फौजों के लिए मुकर्रर कर दिए गए थे। मैं जिस फौज में था वो गयासपुर से ज़रा वरे किनारे जमुना पर कायम थी। इस नदी को जिनने देखा है वही इसके वसी पाट का कयास कर सकते हैं। बरसातों में नदी पर दरियाए आज़म का गुमान होने लगता। गाजी आबाद में हिंडन के वरले किनारे से कुछ आगे जनूब की तरफ से लेकर ओखले तक सारा इलाका पानी से भर जाता। इसी बिना पर इस इलाके को खलखुल्ला तंजन पटपड़गंज कहने लगे थे। हालांकि वहाँ मच्छरों, पिसुओं, जोंकों और दीगर लिस्सा कीड़ों के सिवा गंज के नाम पर कुछ ना था। वल्ला वो भी क्या ज़माने थे। 12 बरस में मेरा दरमाहा 12 तिनके से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया था। इस ज़माने में 5 तिनका महाना पाने वाले उजले खर्च से रहते थे। सुल्तान बहलूल लोधी को अल्लाह बख्शे, जिनका जारी किया हुआ तांबे का सिक्का बहलूली कहलाता था, वो अब भी राइश था और इसमें ताकत इस कदर थी कि आदमी यहाँ से कोल तक का सफ़र अपने घोड़े के साथ करता तो एक बहलूली इसके लिए काफ़ी होता। मुझे अपने घोड़े के साज़ व यूराख, साइज और असलहे की देखभाल पर बहुत सर्फ करना पड़ता था, फिर भी मैं हर महीने 3 से 4 तिनके घर भिजवा दिया करता था। अब सुल्तान सिकंदरिया का ये 21वां सने जुलूस था। मेरी बेटी 2 बरस की होकर 13वीं में लगी थी। घर से खबर आई कि इसकी सगाई और फिर ब्याह आइंदा बरसातों से पहले हो जाए तो खूब हो। मुझे बुलाया गया था कि जाकर सब मामला तय कर दूँ। हर चंद के खुदावंदे आलम सुल्तान सिकंदरिया ने शरा शरीफ की पाबंदी पर बहुत कुछ ज़ोर दिया था, लेकिन हम इन अतराफ़ के गंवान मुसलमानों में हिंदुओं की बूबास अभी बहुत कुछ बाकी थी। जुमे के सिवा हर दिन हम लोग हिंदुवानी धोती पहनते थे। जुमे को अलबत्ता दोबर का ढीला सफ़ेद पाजामा, गाढ़े का और महमूदी का कुर्ता पहना जाता था। हमारी औरतें घर से बाहर निकलती थीं, लेकिन लंबा घूंघट काढ़ कर। हर घर में एक संदूक था जिसमें दिवाली और दशहरे और ईद, बकरीद, शुभरात के लिए रुपया पसंदाज किया जाता था। शादी की रस्में बहुत कुछ हिंदुआना थी। कन्यादान या जहेज की सूरत ना थी, लेकिन लड़के वाले शादी से पहले मंगनी लेकर ज़रूर आते और इस मौके पर शादी से कुछ कम ही खर्च होता। निकाह के बाद रुख्सती, जिसे हम लोग गौन या गौना कहते थे, अक्सर बहुत देर से होती थी। हिंदुओं की तरह हमारे यहाँ बचकाना शादी का रिवाज तो ना था, लेकिन मंगनी, फिर निकाह, फिर गौन की रस्में कुछ ना कुछ वक्फे से अदा होती थी। जेठ निकलकर आषाढ़ की आमद आमद थी जब मैंने घर जाने का इरादा किया। 300-350 तिनकों का इंतज़ाम मैंने कर लिया था कि मसारिफ शादी इससे कम भला क्या होंगे। इरादा था कि शाम होने के पहले, लेकिन असर के बाद चल निकलूं कि मौसम ठंडा हो चुका होगा। एक मंजिल करते करते गुरूब आफ्ताब होने लगेगा, कहीं कोई अच्छी सराय देखकर रात गुजार लूँगा और सुबह ठंडे ठंडे अपने गांव ननगल खुर्द पहुँच लूँगा। ज़्यादा सफ़र बहुत थोड़ा रखा, तोहफा तहाइफ की ज़रूरत ना थी कि सारा सामान शादी और दीगर रस्म शादी के लिहाज से घर की औरत को खरीद करना था। सवारी के लिए घोड़ा था ही और कुछ दरकार सिपाही को न था। मेरा रास्ता नहर फेरोज शाही के बाएँ किनारे से लगा हुआ कई कोस चलकर फिर नहर से कट जाता था। वज़ीरपुर पर नहर फेरोज शाही खुद ही खम खाकर करनाल और हिसार की जानिब रवा हो जाती थी। दो रवैया घने पेड़ और आती बरसात के बादलों दो रवैया घने पेड़ और आती बरसात के बादलों की धुंधली रोशनी ने नहर को दोनों तरफ नीम तारीकी सी पैदा कर दी थी। एक जगह खम इस कदर सख्त था कि खम के पहले और बाद दोनों सिरे नज़र ना आते थे। खम में दाखिल हो जाएं तो गोया दोनों तरफ की राह बंद हो जाती थी, लेकिन ख़तर कोई न था। हकूमत में सुल्तान वाला शान की राहें सब महफूज थीं और ये जगह तो हज़रत दिल्ली से कोई 5-6 करोड़ ही थी। दर हकीकत मेरे लिए जगह रात के पड़ाव की यहाँ से बहुत दूर ना थी। मैं घोड़े पर सवार गुनगुनाता दुलकी चलता चला जा रहा था। सामने एक पुलिया थी जिसके नीचे नाला अभी खुश्क था। पुलिया के वरली तरफ एक बुढ़िया नहायत तबाह हाल नज़र आई। मुझे देखते ही उसने कुछ दुआया लहजे में मगर ज़रा बुलंद आवाज़ में पुकारा, अकेले दुकेले का अल्लाह बेदी। फिर इसने बहुत मिस्कीन लेकिन फिर भी बुलंद आवाज़ में मुझसे कहा, अल्लाह की राह में कुछ दे दो बेटा, बेवा दुखिया पर तरस खाओ। मैंने सोचा सफ़र में हूँ, नेक काम के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त उसे कुछ दे दूँ तो नेक शगुन होगा। फिर मैंने घोड़ा आहिस्ता किया, रास को बुढ़िया की तरफ मोड़ कर झुका, शलोके की जेब में हाथ डाल के कुछ निकाल कर हाथ डाला कि कुछ निकाल कर बुढ़िया को दे दूँ। एक मर्तबा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर बदजबानी करने ही वाला था कि किसी और ने एक और धक्का दिया। मैं बेकाबू होकर माँ की तरफ को लड़खड़ाया। घोड़ा अलिफ होने लगा। रास मेरे हाथ से निकल गई। घोड़ा अलिफ होकर किधर गया ये मैं ना देख सका कि किसी ने इतनी देर में मेरे सर पर काला कपड़ा डालकर मुझे अंधा कर दिया था। कपड़ा इतना मोटा और पसीने की बदबू से भरा हुआ था कि मुझे उबकाई आ गई और मेरी सांस रुकने लगी। कपड़ा फौरी तौर पर मेरी गर्दन पर कस दिया गया तो मैं समझा कि ये मटमार है, जान न बचेगी। मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने कमर से खंजर निकालना चाहा कि एक दो को ख़त्म ही कर दूं। ये नहीं जानते कि किसके घर भी आना दिया है। एक दो को तो मार ही कर मरूंगा। मेरी सांस अब बिल्कुल ही रुकी जा रही थी। उपकाइयों और खंजर निकालने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिशों में सांस टूटी जाती थी। मैंने पूरी क़ुव्वत से चिल्लाकर इनको बुरा भला कहना चाहा, लेकिन अब तक मेरी मुश्कें भी कस ली गई थी। मेरी कमर में हिमयानी बंधी हुई थी, इसे नहायत सफाई से काट कर निकाल लिया गया। घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी, फिर किसी ने इसको चमकारा और चुप किया। घोड़ों की चोरी में भी जालिम इस गज़ब के मुशाक थे कि बज़ाहिर घोड़ा भी पलक झपकते में राम हो गया। सारा काम मुकम्मल खामोशी में हुआ था। फिर मेरे सर पर से कपड़ा खींच लिया गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, मेरे मुंह में एक और कपड़ा पहले से भी ज़्यादा बदबूदार और मुताफन ठोंस कर साथ ही साथ आँखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर कुछ दौड़ते हुए कदमों और घोड़े के हल्के टाप की आवाज़, दोनों आवाज़ें बहुत जल्द मध्यम होकर गायब हो गई। किसी के सांस लेने की भी आवाज़ सुनाई ना देती थी। बात करने या खांसने, खनकाने या हंसने की तो बात ही क्या थी। मैं ये तो समझ ही गया कि ये परले दर्जे के मुशाक बटपार हैं और बुढ़िया इनसे मिली हुई थी, लेकिन ये भी था कि वो मुझे जान से मारना ना चाहते थे। इनका मंशा महज ये था कि मुझे बेदस्त तो पा करके छोड़ दें और इतनी दूर निकल जाएं कि मैं इनका ताकुब ना कर सकूं और ना किसी को आगाह इनके बारे में कर सकूं। मुझे रन से बढ़कर गुस्सा था कि मैं सारे आलम में माने हुए सुल्तान की, सारे आलम में मानी हुई फ़ौज का सिपाही और यूं किसी कछुए की तरह पकड़ लिया जाऊं कि मदाफियत में अपनी मैं एक और वार भी ना कर सकूं। लानत है ऐसी सिपाहगिरी पर और तुफ है ऐसी सुल्तानी पर कि रियाया यूं बेखटके दिन दहाड़े लुट जाए। मैं यहाँ यूं ही मजबूर पड़ा रहा तो क्या पता रात में किसी मुझे जानवर का शिकार हो जाऊं। क्या खबर मुझे कोई और बटमार कत्ल करके जो कुछ मेरे बदन पर कपड़े और थैली में सत्तू और जलेबियाँ हैं और शलूके की जेब में चंद सिक्के बहलूली हैं उन्हें भी लेकर चंपत हो जाए। मैंने चीखना चाहा, लेकिन वो मुताफन कपड़ा मेरे हलक तक यूं ठुसा हुआ था कि मैं अगर बोलने की कोशिश में मुंह या हलक पर कुछ ज़्यादा जोर डालता तो कपड़ा शायद मेरे हलक के अंदर ही उतर जाता। इतना वक्त कितना गुजर गया था मुझे इसका कुछ इल्म ना हुआ था। मगरिब तो हो ही चुकी थी, लेकिन कहीं दूर से भी अजान की आवाज़ या मंदिरों में घंटे की पुकार या चरागाह से वापस होते हुए किसान या चरवाहे के साथ मवेशियों के रेवड़ों की घंटियों की आवाज़ कुछ भी ना सुनाई देती थी। दाना दुनका चुनकर अपने घोंसलों को लौटने वाली चिड़ियों के झुंड अगर थे तो या तो अभी वापस ना हो रहे थे या वो भी शाम की तनहा शफक में चुप चुपाते निकल गए थे। या अगर आवाज़ कोई सुनाई देने वाली थी भी तो ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश से मेरे कानों में साए साए इस कदर होने लगी थी कि कुछ सुन लेना मुश्किल था। क्या बहुत देर हो गई थी? क्या अब कोई आने वाला नहीं है? अभी अभी मैंने शेर की दहाड़ सुनी थी। शेर तो इस इलाके में थे नहीं। हाँ, गुलदार बहुत थे। गुलदार तो जमुना के किनारे की कछारों में दिल्ली से करनाल तक छोटे हुए सांडों की तरह बेरोक टोक घूमते थे, और भेड़िए भी। गुलदारों की तो हिम्मतें इस कदर खुली हुई थीं कि दिल्ली के मज़ाफात में जो आबादियाँ बावजह नकल मकाने के ज़रा छिदरी हो जाती, इनके खाली घरों में गुलदार आबाद हो जाया करते थे। यहाँ तो मैं जमुना के किनारे से दूर था। सुल्तान फेरोज शाह खुल्द मकानी ने यह नहर बनवाई ही इसलिए थी कि जमुना का पानी जिन इलाक़ों में पहुंचता नहीं है वहां बज़रिए इस नहर के पहुंच जाए। लेकिन यहां अब भी घने दरख्तों और नहर की रुतूबत ने कछार जैसा समा पर्दा कर दिया था। सुल्तान फेरोज़ को अल्लाह ने जन्नत में ऊंचा मुकाम ज़रूर दिया होगा। उन्होंने इस राह में और कोल की राह में जगह जगह शाही सराएँ बनवाई थीं जहाँ कोई भी मुसाफिर कुछ रकम दिए बगैर ठहर सकता था। और अच्छा ही था कि उन्होंने यह हुक्म दे दिया था कि सराओं का खर्च तमाम खजाना सुल्तानी से अदा हो, वरना मुझ जैसे लुटे पुटे मुसाफिर को तो राह में एक वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत के लाले पड़ जाते। मैंने बहुत चाहा कि राह के किसी पत्थर से रगड़ कर अपने हाथों को बंदी से आज़ाद करा लूँ, लेकिन एक तो इस अंधेरे में पत्थर कहाँ पीलता, मेरी आंखों पर अंधेरी जो चढ़ी हुई थी और हाथ पीठ पर बंधे हुए थे, पाँव के बंद को रगड़ कर काटने की कोशिश में जगह जगह खराशों के सिवा कुछ हाथ ना लगा। रात तो बेशक हो चुकी होगी, कहीं दरख्तों के पीछे कुछ कुछ पसर तो नहीं हो रही है, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहे हैं, यह आवाज़ कैसी है? मैंने बहुत गौर से सुनना चाहा, लेकिन कानों में साय साय अब भी हो रही थी। हाँ, ये कुछ नई सी आवाज़ थी, टहर टहर कर आ रही थी, कहीं किसी मंदिर में घंट नाखूस तो नहीं बज रहा? नहीं, ये तो गहरी और दूर तक फैलने वाली आवाज़ थी, टन 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 टन। ज़रा रुक कर, कोई फील नशीन इधर आ रहा था। मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा, मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा, शायद मेरी जान बच गई, बच ही जाएगी। हाथी की घंटियों की आवाज़ नज़दीक आई, आहिस्ता हुई ठहर गई। मोतबर सिंह, ज़रा देखना ये राह में क्या पड़ा हुआ है। मजबूत ठहरी हुई आवाज़ लेकिन किसी फौजी अहदेदार या शाही अहलकार की नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स की थी जो ऐश व इशरत में पला बड़ा रईस ज़्यादा हो। नहीं, अभी उतरो नहीं, पास से देखो। मैंने हाथ पांव हिलाने की सही और तेज़ कर दी कि महावत समझ ले कि मैं जिंदा हूँ। आलीजा, लगता है डाकुओं ने किसी शख्स को घायल करके डाल दिया है, नहायत मुअद्दब आवाज़ आई। नीचे उतरो, इस गरीब की कैफियत दरियाफ्त करो। अच्छा, यूँ करो, हाथी गुजरा और आगे ले जाकर कहो कि सोंड से इस आदमी को उठाकर ऊपर मेरे पास ले आए। चलो शाबाश। मोतेबर सिंह ने हाथी को कुछ आगे बढ़ाया, लेकिन कितना इसका मुझे अंदाज़ा ना हो सका। मोतेबर सिंह ने हाथी से सरगोशी में कुछ कहा और कई बार कहा, फिर मुझे लगा कि कोई बहुत ही ताकतवर और कई गज़ लंबा मोटा अजगर मुझे बाहों में लपेट कर बलों में अपने उठाए लिए जा रहा है। मैंने सहम कर ख़ुद को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ वो ज़बरदस्त बादलों जैसा जोर। आन की आन में हाथी ने मुझे रईस के होदे के आगे महावत और मालिक के बीच की जगह में धंस दिया। बला से जगह तंग थी, लेकिन अब मैं जीक जान से तो बच निकला था। मोतेबर सिंह ने, ये शायद मालिक ने भी इसका हाथ बटाया, मुझे बआसानी इस अफूनत से भरे और शायद तेल और थूक से भी चटके हुए मेरे हलक में ठुसे हुए कपड़े और आँख की पट्टी से आज़ाद कर लिया गया। तहाँ मुझे अपनी आवाज़ दोबारा हासिल करने में कुछ वक्त लगा। थूक को बमुश्किल घोंटते हुए मैंने फील नशीन के सवाल के जवाब में मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बिपता कह सुनाई। तो सिपाही जी, तुम दोहरे खुश नसीब थे, इन लोगों ने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया और फिर हम इधर आ निकली। बंदे का बाल बाल आपके एहसान से गुंधा रहेगा। मैं तो समझा था कि शेर भेड़िया कोई ना कोई मुझे खा ही लेगा। खैर, रसीदा बोध बुलाए हुआ सो हुआ मैं बहादुरगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ तक बआसानी तुम्हें पहुँचा दूँगा, आगे जो तुम्हारा जी चाहे।